सद्भावना और अनंत की कृपालुता हम सभी भाई बहनों के साथ हैं और उसी कार्य शुभ परिणाम है कि हम सभी भाई बहन अपने को साधक स्वीकार करके साधक की प्रकृति के अनुसार सत्संग के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए उत्सुक हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक संत जिन्होंने अपने अनुभव लिखा था और यह शीर्षक था उसका रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा, ये इस नाम से उन्होंने निबंध लिखा, अपने अनुभव के आधार पर उसे प्रकाशित किया। उसमें यह बताया कि जब कोई मनुष्य, जब कोई साधक घर वापस जाने की यात्रा आरंभ करता है तो उसके जीवन में एक आनंद होता है। घर वापस जाना आप समझ ही रहे होंगे, हम सब लोग यहाँ के वासी तो हैं नहीं जी, शरीर बना है भौतिक तत्वों से, हम सब भाई बहन बने हैं परमात्म तत्व से और यहाँ शरीर के साथ तादात्म्य जोड़ने के कारण ममता में फंसे हुए हैं। ममता करते हुए भी, अपना मानते हुए भी यहाँ कोई रह नहीं पाता है और उस अनंत तत्व को न जानते हुए भी उस ओर सभी आकर्षित रहते हैं। तो पूर्णता कब मिलती है, शांति कब मिलती है, आवागमन कब मिटता है, भय और चिंता पराधीनता कब मिटती है, जब हम जहाँ के हैं वहाँ पहुँच जाएं, जिसमें से निकले हैं उसमें समा जाएं। ये भाषा तो समझ में आ गई ना, वो रिटर्न जर्नी का यही अर्थ था, वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि बड़ा आनंद छाया हुआ है चारों ओर। आज मैं पता नहीं कितने कितने युगों के बाद, कितने कितने वर्षों के बाद घर जा रहा हूँ, अपनी जगह पर पहुँचने जा रहा हूँ, अपने उद्गम से मिलने जा रहा हूँ, अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हूँ, बड़ा आनंद छाया है। तो लिखा उस सज्जन ने कि मुझको ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आसमान भी मेरे साथ आनंद मना रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कि मेरे रोम रोम में आनंद छाया है और वृक्ष के जो पत्ते हैं वो डोल डोल कर, हिल हिल कर आपस में एक दूसरे के साथ टकरा के उसमें से जो आवाज निकलती है, वृक्ष के पत्ते आपस में हिलते हैं तो वो कहते हैं कि मालूम होता है कि सारी प्रकृति ताली बजा बजा के मेरे साथ नाच रही है। किस हर्ष में कि आज एक आदमी भूला भटका हुआ, संसार के बन में खोया हुआ अपने घर जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ आकर के बैठी तो मेरे भीतर भी बड़ा आनंद आया। क्या सोच करके कि आज इतनी इतनी आत्माएं, आज इतने इतने हमारे भाई बहन सब रिटर्न जर्नी के यात्री हो करके घर वापस जाने के लिए, अपने उस अनंत उद्गम से मिलने के लिए उत्सुक होकर एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे उन्नति की ओर उन्मुख होने वाले, अपने उद्गम से मिलने के लिए उत्सुक भाई बहनों के जीवन का उत्कर्ष देख करके जैसे हमारे चारों ओर प्रकृति की ओर से, प्रकृति पति की ओर से, और जिस परम कारुणिक संत मानवता के संरक्षक संत हमारी पीड़ा से द्रवीभूत होकर हमारी उन्नति के लिए प्रेरणा देने वाले संत भी हमारे इस प्रयास से आनंदित हो रहे हैं। चारों ओर जैसे एक एक लहर दौड़ रही है, वो भीतर से भी, बाहर से भी, प्रकृति की ओर से भी, परमात्मा की ओर से भी, और पिता तुल्य संत की ओर से भी, कि इतने इतने सब मनुष्य जो हैं, भाई बहन जो हैं, प्रभु के प्यारे बालक जो हैं, वो अपनी उन्नति के लिए रिटर्न जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, और आपके साथ मिलकर मैं उस अनंत से और संत से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि शरीर का नाश होने से पहले यह शरीर इस धरती पर डोलता फिरता रहे, उससे पहले हम सब लोग उस अपने उद्गम से मिलकर सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाएं। अब कैसे चलेंगे, कहाँ से यात्रा आरंभ होगी? जो प्रकाश हमें दिया गया है, उस प्रकाश में जीवन के इस दार्शनिक सत्य को हम सब भाई बहन स्वीकार कर लें कि शरीर बना है भौतिक तत्वों से और आप बने हैं अनंत तत्वों से। इस बात को स्वीकार करके ही इस यात्रा में हम लोगों को उत्साह मिलेगा, आनंद बढ़ेगा, बल मिलेगा। इसलिए पहले इस सत्य को स्वीकार कर लें कि शरीर बना है भौतिक तत्वों से, तीनों ही शरीर। समाधि तक तो भौतिक सीमा है, तो शरीर बना है भौतिक तत्वों से और आप सभी भाई बहन बने हैं अनंत तत्वों से। तो महाराज जी के दो वाक्य मुझे मिले थे दो चार दिन पहले, उसमें ऐसा लिखा था कि वस्तु खिंचती है धरती की ओर, भाई भौतिक तत्वों से जो बना है वो भौतिक तत्व की ओर ही आकर्षित होगा। तो वस्तु खिंचती है धरती की ओर और मनुष्य खिंचता है अनंत की ओर। ये ग्रेविटेशन पुल होता है ना, क्या कहलाता है वो, ग्रेविटेशन ही कहलाता है। तो धरती में जो आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति से सब वस्तुएं धरती की ओर खींचती हैं, और अनंत में जो आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति से हम सब लोग उनकी ओर खींचते हैं। तो स्वभाव से क्या होना चाहिए? तो स्वभाव से ये होना चाहिए कि हमारा आपका सहज आकर्षण उस अनंत परमात्मा की ओर होना चाहिए था। सच्ची बात तो यही है और होता भी यही है। ये तो अपनी भूल है कि हम वस्तुओं के साथ अपने को मिला देते हैं तो अपनी भी मिट्टी पलीद होती है। ऐसा लगता है कि इस वस्तु के बिना कैसे रहेंगे, इस मकान के बिना कैसे रहेंगे, इस सामान के बिना कैसे रहेंगे, इस व्यक्ति के बिना कैसे रहेंगे। तो ये अपनी दुर्दशा ही है, अपनी भूल का परिणाम है कि हम सब लोगों को वस्तुएं इतनी इतनी आकर्षक लगती हैं कि जो सच्ची बात है उसको हम कुछ देर के लिए हटा देना चाहते हैं, अपने सामने से याद आती है तो उसको ढक देना चाहते हैं, दूर कर रख देना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मनुष्य की जो रचना है, हमारा आपका जो ये सब के भी बहुत से अर्थ होते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। मैंपन सबसे स्पष्ट शब्द है। तो हमारा आपका मैंपन जो है इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना अनंत तत्व से हुई है। यह एक ऐसा दार्शनिक सत्य है कि इसको स्वीकार नहीं करने पर एक कदम भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की बात नहीं होगी। तो यह पहली बात है संत की वाणी के अनुसार और मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार कि हम सभी भाई बहनों को आगे की ओर बढ़ना है, अमर जीवन की ओर बढ़ना है, परम प्रेम से अपने को भरना है। तो यह काम जो है, ये अपना इस जीवन का प्रोग्राम जो है वो कब पूरा होगा? जब इस दार्शनिक सत्य को अपने द्वारा अपने लिए स्वीकार करिए। अपने लिए स्वीकार करेंगे तो आपके भीतर बड़ा बल बढ़ेगा। कौन सी बात स्वीकार करें कि शरीर बना है भौतिक तत्वों से और मैं बना है अनंत तत्वों से। तो जो जिस धातु से बना है उसी की ओर आकर्षित होगा, ठीक है ना? इसलिए मरणशील शरीर के संग रहते हुए और संसार के विविध रूप दृश्यों से अपना जी बहलाते हुए भी मनुष्य रह नहीं सकता आत्मा परमात्मा शांति मुक्ति स्वाधीनता की चर्चा किए बिना, नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप में उसे सोचना ही पड़ता है, कुछ न कुछ उसको करना ही पड़ता है, कहीं न कहीं वो टिकता ही है इस आधार को लेकर के। तो उसका कारण यही है कि हमारी जो रचना है वह अनंत तत्व से हुई है। तो उस आकर्षण से हम सभी उस ओर खींचते हैं। प्रारंभिक दिनों की बात है तो जब मुझे संघ के दर्शन से परिचय हुआ तो भारतीय दर्शन का ज्ञान तो थोड़ा कम ही था, मामूली मामूली पुस्तकों के पढ़ने का आधार था, पश्चिम दर्शन का कुछ पढ़ा हुआ था, बीए तक वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा था मैंने। तो वो सब जो सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इतना पुरुषार्थ होना चाहिए, इतना बल होना चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जिसके आधार पर यह जो वर्तमान दशा है शरीर के साथ इतना घुला मिला हुआ सा अस्तित्व मालूम होता था उन दिनों में, इतना घना तादात्म शरीर के साथ कि शरीर से अलग अपना कोई अस्तित्व है ऐसा सोचने से लगता था कि पता नहीं ये कैसी बात है। महाराज जी जब देहातीत जीवन की चर्चा करें तो मैं भीतर भीतर अपने आप सोचती रहूं कि पता नहीं स्वामी जी महाराज कौन सा फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, दादा हमारे लिए तो कोई अर्थ ही नहीं है देहातीत जीवन का, कुछ कुछ पता ही नहीं चले। तो उस समय मेरे भीतर एक बड़ी उथल पुथल होती थी कि कहां से मैं शक्ति लाऊं कि शरीर के तादात्म को तोड़ करके अशरीरी जीवन को पा करके हमेशा का झंझट खत्म करूं। तो बहुत ही भीतर से व्यग्रता होती और जब मेरे प्रयास विफल हो जाते, बहुत चेष्टा होती भीतर से कि शरीर का तादात्म टूट जाए और बिना शरीर के मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है इस बात का मुझको पता चल जाए, तो इसके लिए जितना जितना मैं अपनी ओर से प्रयास करूं, मेरे प्रयास में जब सफलता ना मिले तो भीतर से एकदम से निराशा होने लगे। ठंडी होने लग जाऊं मैं कि अब क्या करें। जब सोचा था कि मुझे अविनाशी जीवन चाहिए, तब आवश्यकता मालूम हुई कि कोई अनुभवी संत मिले तो मुझे मार्ग बताएं, तो अब मुझे संत मिल गए और उन्होंने मुझे मार्ग बता दिया। अब उनको जो करना था सो तो उन्होंने कर दिया, अब मुझे जो करना है वो उसमें मैं पार नहीं पाऊंगी तो क्या होगा फिर। तो एकदम से भीतर से ऐसा अंधकार छा जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर जब मेरी इस दशा का महाराज जी ने अनुभव किया, उनको तो बहुत जल्दी पता चल जाता था कि किसी साधक के भीतर क्या हो रहा है, तो उनको पता जब चला तो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ढंग से मेरे आत्मविश्वास को पाला और उसमें मुझे यह बताया कि देखो भाई, तुम मंगलकारी प्रभु की मंगलकारिता में विश्वास करो और जीवन के अविनाशी तत्वों में विश्वास करो। अपने पुरुषार्थ के बल पर तुम जीवन पकड़ना चाहती हो और उसमें हारने से तुम निराश होती हो, ये बड़ी भारी भूल है। तो बड़ा आश्वासन मिला मुझे, धीरज मिला। अपने भाई बहनों को यह कथा मैं केवल इसलिए सुना रही हूँ कि संभव है कि हमारा जो यह समूह मेरे सामने विद्यमान है, और भी किसी भाई बहन को इस तरह की घबराहट होती होगी कि हमारे करने से हो नहीं रहा है फिर कैसे होगा। तो आपकी सेवा में संत की जीवन दायिनी वाणी मैं निवेदन कर रही हूँ कि बिल्कुल डरने की घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मनुष्य की जो रचना है उस रचना की सारी योजना ही इस ढंग का है कि आपको वह जीवन चाहिए तो उसका सारा इंतजाम जीवन दाता की ओर से किया हुआ है। डरने की, घबराने की, हार मानने की बात नहीं। एक चर्चा हो गई। अब ये सब सुनकर के मुझे क्या मालूम हुआ, तो एक दिन मैं बैठे बैठे अकेले में अपने संबंध में सोच रही थी कि परमात्मा के प्रति एक बड़ी कोमल भावना भीतर से उपज रही थी स्वामी जी महाराज की कृपा से, नहीं तो बचपन से तो मैं परमात्मा से बहुत नाराज थी। संत की कृपा थी, मेरी दशा देख करके नवनीत के समान कोमल हृदय संत का द्रवित होता रहता था और उनके भीतर जो करुणा द्रवित होती थी उसके प्रभाव से मुझे बल मिलता था, तो ये उनकी करुणा का फल था। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान में आया कि उस अनंत तत्व को, उस अविनाशी तत्व को, उस परम रहस्यमय को, उस अनंत माधुर्यवान को मैं किस मधुर भाव से पकड़ पाऊंगी, उस अनंत ऐश्वर्यवान को मैं किस बल से पकड़ पाऊंगी। तो अकेले में बैठ करके मैं सोच रही थी तो एकदम से स्वामी जी महाराज के वचन का अर्थ मेरे सामने आया। तो अच्छा, ये बात है, ठीक है। क्या बात है? तो मुझ में उद्गम से मिलने की जितनी आवश्यकता है, मुझ में अपने उत्थान के लिए जितना चाव है, वह तो बहुत ही सीमित है और बहुत ही संदेहास्पद है, निसंदेहता कहाँ है। तो ये इधर की हालत तो बहुत खराब है, परंतु एक बड़ी जोरदार आशा है। वो क्या है कि साधक के जीवन में उत्थान की जितनी लगन होती है, उसमें जितना जिस मात्रा में उधर के लिए आकर्षण होता है, उससे कहीं अधिक तीव्र आकर्षण उस ओर से हमारे लिए आता है। बड़ा आनंद आ गया। हमने कहा एक इतनी छोटी सी वस्तु है और एक असीम है, तो हम हैं उसी के जात के, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों में एक दूसरे के लिए आकर्षण है। लेकिन जो अनंत है उसका ज्यादा बल होगा कि हमारा होगा है? तो वो ही ना खींच रहा है ज्यादा जोरदार, तो फिर हम काहे को डरे। हमारी पकड़ अगर ढीली भी होगी तो इससे क्या होता है, उधर से जो आकर्षण शक्ति आ रही है हर मनुष्य को उस अनंत जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए, तो वो शक्ति बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। ग्वालियर में वो सिंधिया रानी महारानी जो उस समय थी, अभी भी हैं शायद, विजया राजे, हाँ, तो उन्होंने अपने पति के कैलाशवासी स्वर्गवासी होने पर संत सम्मेलन बुलाया करती है, शायद अभी भी होता है। स्वामी जी महाराज के साथ मैं भी थी वहां, तो बातें सब हो रही थी, तो मुझको महाराज जी ने कहा कि आप भी कुछ कह दीजिए। तो उस समय ये उधेड़ बुन भीतर हमारे बहुत चल रही थी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो जैसे ही ये ध्यान में आया तो एकदम से लगा कि ना, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अपना हाल देख देख करके और अपनी उस सीमित भावना, सीमित विचार और अनेक प्रकार के विकारों से भरा हुआ जो अहम है, उस अहम में कितनी लगन है, कितनी सामर्थ्य है, कितना खिंचाव है, ये देख देख करके धरती पर बैठी हूँ मैं हार मान करके, ये तो बड़ी गलत बात है। संत की वाणी में कितना आश्वासन है, कितना बल है। वो तो कह रहे हैं कि तुम क्यों सोच रही हो, तुम अपनी ओर मत देखो, अपनी असमर्थता अपनी दुर्बलता को मत देखो, उस अनंत की महिमा तो देखो। तो बड़ा आनंद आ गया। हमने कहा बात तो बिल्कुल सही है, हम तो फंसे हैं, गिरे हैं, हाथ पांव टूटे हैं, कोई बल नहीं है, कोई साथ नहीं है कि अपने विकारों का जो जाला बुना हुआ है उसको काट करके उसमें से निकल करके वहां तक पहुंच सके। लेकिन उस सर्वशक्तिमान की दृष्टि मुझ अकिंचन पर है, उस घना आकर्षण हम सब भाई बहनों को खींच रहा है। तो बड़ा आनंद आ गया, बहुत हर्ष हो गया, भय मिट गया। और उसी समय महाराज जी ने खड़ा कर दिया वहां, तो हम गए। हम कहने लगे तो हमने सोचा कि मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, देह से तादात्म्य जोड़कर मिट्टी के साथ मिट्टी होकर मिट्टी पर बैठा, उसकी क्या हिम्मत है। लेकिन एक बात है, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने अपना ही तत्व देकर हमारा निर्माण किया, उन्होंने इस जीवन की प्लानिंग, इसकी योजना इतनी अच्छी बनाई है कि मेरे भीतर उत्थान के लिए एक छोटा सा अंकुर पैदा होता है तो वो अपनी कृपा दृष्टि से उसको पाल करके बड़ा बना लेते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो गई वहां, थोड़ी सी चर्चा हुई, संत के जीवन का उदाहरण रखा महात्मा बुद्ध का, और फिर मुझे याद आ गया तो प्रभु की महिमा को याद करके मैंने एक वाक्य जो साहित्य में पढ़ा था तो सुना दिया लोगों को। बोलते 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 हमने कहा कि ऐसे ऐसे सत्संग से और इस प्रकार के संत वाणी से जीवन में कितनी क्रांति आती है, कितना उत्थान होता है, आज मुझे कितना साहस मिला है। और मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रेमास्पद, मैंने तेरी छांह गही, तूने मेरी बांह गही। सब लोग एकदम शांत हो गए। कितने हजार लोगों की मंडली थी, सब लोग एकदम शांत हो गए। तूने मेरी, मैंने तेरी छांह गही, मैं कहां पहुंच पाऊं तुम्हारे पास, मैं तो तुम्हारी छाया को ही छू रही थी। मैंने तेरी छांह कही, तूने मेरी बांह कही, मुझे निश्चिंत कर दिया, मुझे निर्भय कर दिया, कंधे पर से अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना का सब भार उतार दिया। तो ऐसा जो यह एक अनुपम जीवन मिला है, हार मान कर बैठने के लिए नहीं मिला है, निरुत्साह होकर बैठने के लिए नहीं मिला है, भविष्य की आशा पर दिन काटने के लिए नहीं मिला है, यह जो एक अनुपम क्षण मिला है हम सभी भाई बहनों को अनेक प्रकार की बाधाओं को काट करके किसी किसी प्रकार से आप निकल सके हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयों के सिर पर पांव रख करके बड़ा साहस करके आप निकल सके हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर छोड़कर वृंदावन आ जाने की बड़ी भारी विशेषता है, मैं ये नहीं कहती हूँ। मैं इस बात की विशेषता मानती हूँ कि सत्संग का महत्व आपकी दृष्टि में इतना बढ़ गया कि दूसरी सारी कठिनाइयों को आपने नगण्य कर दिया। तो यात्रा वहाँ से यहाँ तक की हो गई, इसका महत्व नहीं है, लेकिन इस यात्रा के भीतर आपके जीवन में सत्संग की जो विशेषता आ गई, उस विशेषता का महत्व अवश्य है, और वही एक बल है जो हम सभी भाई बहनों को संत की वाणी का अनुसरण करने में समर्थ बनाएगा। तो आज एकादशी की तिथि है, मानव सेवा संघ के प्रादुर्भाव की तिथि, और संत के विभू और व्यापक होने की तिथि, इस तिथि के पुण्य पर्व पर हम सब लोग जीवन संबंधी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो इस पहली ही बैठक में मैं यह निवेदन करना अच्छा समझ रही हूँ कि किसी के भीतर किसी प्रकार की दुर्बलता हो तो उसकी परवाह मत करो। अगर आप दुर्बलता को मिटाना चाहेंगे तो अवश्य मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे ही बल से उसको मिटाना होता तो मैं आप सब भाई बहनों में से सबसे आगे हार मानकर बैठ जाती हूँ, लेकिन हमारे बल से नहीं मिटती है। अपनी अपना पुरुषार्थ क्या है? अपना पुरुषार्थ यह है कि उस सर्व सामर्थ्यवान की उपस्थिति मान करके अकेले में बैठ करके अधीर होकर आप इस बात की आवश्यकता अनुभव करिए कि वह कौन सी घड़ी होगी कि मैं अपने ही बुने हुए जाले को काटकर पार कर जाऊं, वह कौन सी घड़ी होगी कि जो इस भ्रमात्मक स्वीकृति में से निकलकर उस नित्य संबंधी से मिलकर सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। तो वह कौन सी घड़ी होगी, वह कौन सी घड़ी होगी? यह जीवन कब ऐसा होगा, यह जीवन कब ऐसा होगा? आवश्यकता अनुभव करना मनुष्य का पुरुषार्थ है और उस आवश्यकता की पूर्ति कर देना प्रेमास्पद का सहज स्वभाव है। इतनी सी बात है। अब ऐसा समय कब मिलेगा, ऐसी घड़ी कब आएगी, सांस सांस का पता नहीं है, एक एक दिन का कुछ ठिकाना नहीं है, तो हम लोग शिथिलता में और थोड़ा थोड़ा रहन सहन का एक एक अच्छा सा ढंग बन गया है और खाने पीने का और बीमार होने से इलाज होने का एक प्रबंध बन गया है और समाज में अच्छा आदमी कहलाने का एक अनुकूल संयोग बन गया है। तो इसी इसी मिथ्या सुख के आभास में उस अनमोल जीवन की घड़ी को चूक जाना बहुत बड़ा घाटा होता है। नहीं तो सोच के देखो ना, और कहां टिके हैं हम लोग? जिस शरीर में बड़ी घनी ममता है, उस शरीर को रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया, तो सोचने लगी कि क्या नुकसान है, दो चार बरस और आराम से रह लो। अरे भाई, कब तक रह लोगे, कुछ पता है? नहीं पता। जन समाज के साथ अच्छे वचन बोल करके, अच्छे व्यवहार करके, कुछ कुछ ऐसी दृष्टियां अपने को प्राप्त हो गई हैं कि जो आदर और प्रेम से मेरी ओर देखती है, तो उसके बल पर कब तक सांस लोगे? अनुकूलता बनी रहेगी जी? नहीं रहेगी। यह जो आदर और प्रेम की दृष्टि है कि कुछ लोग मुझको अच्छी निगाह से देखते हैं, तो यह दृष्टि का जो सुख है कि हमको अच्छा समझने वाले कुछ लोग मेरे पास हैं, तो ये सुख जो है ये देह के अभिमान के पार पहुंचेगा जी? ये देह का अभिमान ही है जो सम्मान के सुख को महत्व दिलाता है, अपमान के दुख को विशेष मानता है। ये देह का अभिमान ही है, ये अहम का अभिमान ही है। ये बेचारे भी इसको नहीं जानते हैं। ये जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, ये संगी साथी मिले इस दुनिया में आकर रहने के लिए, ये बेचारे भी सम्मान अपमान को नहीं जानते हैं। हाथ पांव को क्या परवाह है, आंख कान को क्या चिंता है कि कौन कैसे कैसा हमारी ओर देख रहा है, ये सब भी नहीं जानते हैं। ये तो बिल्कुल ही मिथ्या बिल्कुल ही निरर्थक है। ये देह का अभिमान है कि जिसके कारण से मुझको सम्मान प्रभावित करता है, अपमान प्रभावित करता है, तो इस सीमा के भीतर हम लोग कब तक रहेंगे, कहां तक कुशल कटेगा बताओ। हमारे बचपन का सुना हुआ है, भोजपुरी में स्त्रियां जो आपस में कहावत कहती हैं, मुहावरा जिसको कहते हैं, तो लोग कहेंगे कि चोर चोर की स्त्री कहां तक शगुन मनाएगी, कहावत कहा जाता है। अरे भाई, चोर जाता है ना चोरी करने के लिए, तो लोग कहावत कहते हैं, स्त्रियां आपस में कहती हैं कि चोर की स्त्री कहां तक शगुन मनाएगी, पति जा रहा है चोरी करने के लिए तो वो कहां तक शगुन मनाएगी, क्योंकि वो तो मृत्यु के मुख में जा ही रहा है। तो ऐसा ही हाल है अपना कि इन बाहरी आधारों पर जीने की सुविधा मिल गई है, शरीर की सेवा की सुविधा मिल गई है, तो कुछ अच्छे वचन बोलने वाले साथी मिल गए हैं, इस अनुकूलता के आधार पर उस अनमोल तत्व से कब तक मैं वंचित रहना चाहती हूँ, यह प्रश्न हर भाई बहन को अकेले में अपने से पूछना चाहिए। जीतना आएगी, सामर्थ्य की बात नहीं है, सामर्थ्य तो सामर्थ्यवान के पास बहुत है, वो तो अपनी ओर से हर समय तत्पर रहते हैं कि कौन मेरा बच्चा असमर्थता की घड़ी में मुझको याद करेगा, उनके पास बहुत है, मेरे काम आता क्यों नहीं। तो मुझको इसका पता इसलिए नहीं चलता है कि जो बिना मांगे थोड़ी सामर्थ्य उन्होंने अपनी ओर से मुझे दे दी थी, उसी का अभिमान लेकर के मैंने एक अपने चारों ओर घेरा डाल दिया, सीमित तो हो गया, अब पते ही नहीं चलता है। तो उसी अभिमान के कारण से हम उस अनंत तत्व के अनंत सामर्थ्य से वंचित हो गए, और नहीं तो जिन्होंने अपने अहम के अभिमान को छोड़ दिया, जिनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उधर से लग जाता है, उनको तो कभी असमर्थता का पता ही नहीं चलता है, थकावट कभी मालूम ही नहीं होती है, किसी बात के लिए कभी कुछ उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि अब मुझसे नहीं होगा, कि अब हम नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता है। अनंत की ओर से उस अनंत सामर्थ्य से जिसका जुट जाता है, उनका तो कुछ नहीं बाकी रहता, सब पूरा ही पूरा है सब समय। तो देखिए, संसार में व्यवहार करते समय, परस्पर एक दूसरे से मिलते जुलते समय, जहाँ पर जिस जगह पर जो काम अपने सामने आया है उस काम को करते समय, और कार्य क्षेत्र से अलग होकर अकेले बैठते समय, अगर इस बात की याद अपने को बनी है कि बाबा ये तो अपनी यात्रा है, यहाँ तो कहीं टिकाव नहीं है, ठहराव नहीं है, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो इस तरह की एक लगन लग जाए भीतर, तो ऐसा चमत्कार है मनुष्य के अहम रूपी अणु में, ऐसा चमत्कार है कि जैसे जैसे हम सजातीयता के लिए उन्मुख होने लगते हैं, जैसे जैसे हम इधर के बंधनों को अपनी तरफ से ढीला करते हैं, वैसे वैसे उस अनंत के मधुर आकर्षण का प्रभाव अपने पर होता है। मैंने बहुत ही कठिन घड़ी में उस मधुर आकर्षण का परिचय पाया है। कौन सी कठिन घड़ी? बड़ी कठिन घड़ी थी मेरे लिए, मेरी साधना की। मैं अपने को बड़े जोर से समझा रही थी, मना रही थी अपने को, किस बात के लिए कि यहाँ चारों ओर जो कुछ तुमको दिखाई देता है या जो कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ सार नहीं है,
और सार कहाँ है तो वो तुमको दिखता तो नहीं है, लेकिन संत ने तुमको बताया है। तो स्वामी जी महाराज ने जो कहा है उसको सत्य मानो, और ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसको अस्वीकार करो। तो दो ढाई महीने लग गए थे महाराज जी के पास से सत्संग सुन करके वापस चली गई थी, कार्य क्षेत्र में काम कर रही थी और दिन रात इस बात की चेष्टा चल रही थी कि किसी तरह मैं अपने को समझा लेती कि संत ने जो कहा है वो सत्य है और तुम्हें जो चारों ओर दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। तो समझाने से काम ही न बने, बुद्धि के आधार पर पकड़ने पर भी जीवन में उसका प्रभाव ही न हो। बहुत परेशानी, बड़ी कठिन घड़ी थी मेरी साधना के लिए, एक कदम भी आगे बढ़ने का कोई भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इस मूल बात को ही पकड़ न पाओ तो कैसे कदम आगे बढ़े, संसार के बंधन ढीले कैसे होंगे, क्या योग वशिष्ठ के पाठ करने से बंधन ढीले होते हैं? वो तो नहीं होता है, उसमें तो हर सेंटेंस में ही दिखाया हुआ है कि भाई संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। कितने उदाहरण और कितने कथानक हमारे ऋषियों मनीषियों ने, अनुभवी संत जनों ने हमको समझाने के लिए रच दिया, लिख दिया, बता दिया, सुना दिया, तो उससे तो होता नहीं है। तो मैं बहुत सच्चाई के साथ और अपने सभी आत्मीय भाई बहनों के उत्साह वृद्धि के लिए ये घटना सुना रही हूँ कि साधना की दृष्टि से बड़ी कठिन समस्या थी मेरी, बड़ा कठिन समय था मेरा कि ये उलझन पार ही न पावे तो मैं आगे क्या करूं। ऐसी घड़ी में स्टाफ रूम में बैठी थी, एक पीरियड पढ़ा करके आई थी, दो घंटे बाद फिर और प्रैक्टिकल क्लास लेने के लिए जाना था और हम स्टाफ रूम में इजी चेयर में बाहर से देखने में बड़े आराम से बैठी थी और भीतर 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 हृदय मंथन हो रहा था, क्या बताऊं, ये तो यहाँ से कदम उठता ही नहीं है, ये तो यहाँ दलदल में ऐसे ऐसे लगे कि जैसे इतने इतने पांव मेरे कठिन दलदल में फंस गए हैं, जितना निकालने की चेष्टा करूं उतना लगे कि और धंसी जा रही हूँ, बड़ा संकट। तो ऐसी संकट की घड़ी में मैंने दुखहारी हरि को याद किया हो, सो नहीं, वो तो आदत ही नहीं थी, स्वभाव भी नहीं था, अभी भी सहज से नहीं होता है। तो मैं याद करती हूँ, सो बात नहीं थी, याद नहीं किया मैंने, मदद मांगी नहीं कि मैं अपनी ही दुर्बलता में डूबी जा रही हूँ, मुझे उबारो, ऐसा कहकर मैंने पुकारा नहीं, लेकिन दुखी अवश्य हो रही थी कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, इतनी जोरदार शक्ति मेरे बिना बुलाए अदृश्य रूप से, मैंने देखा भी नहीं, बिना देखे और बिना याद किए इतने जोर से, इतने घने और इतने मधुर आकर्षण ने मुझे खींचा। पार होने के बाद मुझको पता चला कि अच्छा, कठिनाई तो पार हो गई, समस्या तो हल हो गई, दुविधा तो मिट गई, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो याद आया कि अच्छा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आवश्यकता अनुभव करना तुम्हारा पुरुषार्थ है और उसकी पूर्ति करना उनके उनके प्यारे का सहज स्वभाव। तो एक बार सच्चाई से इस मार्ग पर कदम बढ़ाने की अभिलाषा तो जागृत हो जाए, फिर तो देर नहीं लगती है, फिर और कोई बात नहीं है, कोई बाधा नहीं हो सकती। कितने जन्म हमने भूल में बिताए और कितनी शक्ति मैंने
सुख भोग की प्रवृत्ति में गमाया, इसका हिसाब वे अनंत सामर्थ्यवान रखते नहीं। हिसाब तो वो रखे कि जिसके पास सीमित चीज हो, कि किसको कितना देंगे तो बांटने के लिए हिसाब करेगा। अब इस आश्रम में अपने आए हुए सम्माननीय अतिथियों को सबको हम लोग सुविधा पूर्वक जगह नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्या करें? तो हिसाब बना बना कर रखते हैं, चार्ट बना बना कर रखते हैं। 7 दिन पहले से सोच रहे थे कि इतने हमारे भाई बहन आएंगे, किसको कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो जिसके पास सीमित चीज है वो हिसाब करता है। उस अनंत परमात्मा की शक्ति की कोई सीमा नहीं, वो हिसाब नहीं करता कि ये बच्चा मेरा कितने दिन से भटका हुआ है, ये कितने जन्म गवा के आ रहा है, कुछ नहीं सोचते। जिसको आवश्यकता है, जिसने आवश्यकता अनुभव किया उसी पर बरसा दिया, कितना तो कोई सीमा नहीं है। जितना तू ले सके, जितना तू ग्रहण कर सके, जितने में तेरा कल्याण हो जाए, इतना इतनी मंगलकारिता है उस जीवन दाता में, और इतनी कृपालुता है उस जगत पिता जगत जननी में, और वो इस समय इसी क्षण में उसी रूप में वो विद्यमान भी है। जैसे जैसे और अनुभवी जनों ने अनुभव किया, जैसे और संत महात्माओं ने भक्तों ने अनुभव किया, उसी प्रकार का उसी ढंग से हम सब भाई बहनों के साथ भी व्यवहार करने के लिए, अपनी उदारता, अपनी कृपालुता, अपनी सामर्थ्य बरसाने के लिए वो सदैव तत्पर हैं। ऐसी ऐसी अच्छी परिस्थिति फिर कब आएगी सोचना ही नहीं चाहिए। वर्तमान में जो हम सब भाई बहनों के सामने आ गया है, इसी का हार्दिक स्वागत करिए, इसी का आदर करिए, और उसकी कृपालुता का बल लेकर के अपने अपनी अपने स्तर से ऊपर उठने के लिए सदैव तत्पर रहिए। हम सभी भाई बहनों का कल्याण होगा, अवश्य होगा। संत जन भी सदैव मदद करने के लिए तैयार हैं, भगवान भी सदैव मदद करने के लिए तैयार हैं, और केवल मेरा ही संकोच है कि इतनी देर हो गई। तो अब संकोच छोड़ दिया जाए, काम बन जाएगा।